ओम शांति। मुरली से पहले एक अनाउंसमेंट है कि मधुबन के समर्पित भाई बहने, मधुबन के समर्पित ट्रायल वाले, हॉस्पिटल के समर्पित ट्रायल वाले मुरली क्लास के बाद हिस्ट्री हॉल में पहुंचेंगे और इंदौर जोन की बहनें उनसे मिलेंगी और उनको टोली खिलाएंगी, क्योंकि इस बार बाबा के टर्न में इंदौर जोन का टर्न है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा बच्चों का कौन है? खुदा दोस्त। खुदा दोस्त होने के कारण बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी करते हैं। बाबा ने बताया कि शुरू शुरू में छोटे छोटे बच्चे आए, ना कोई भक्ति किया था, ना कुछ ऐसा किया हुआ था, बहुतों को साक्षात्कार कराते थे, साक्षात्कार भी करते थे, लेकिन बीच बीच में फिर माया का ऐसा प्रभाव पड़ा, बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए। बाबा ने कहा, देखो खोटी तकदीर कैसी होती है। बाबा क्या बना, दूसरों को ज्ञान सुनाया, दूसरों को बचाया, गटर से निकाला और खुद जाकर के फिर गटर में गिरा, तो इसको क्या कहेंगे? ये खोटी तकदीर है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना है। कहा भी जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा ने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, बाबा ने कहा कि खुशी में अगर पैदल चलते जाएंगे थकावट भी नहीं रहेगी और शरीर का भी कोई भान नहीं रहेगा, इसलिए बच्चों को क्या करना है? खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कहा जैसे बाप रहम दिल है, तो बच्चों को भी रहम दिल बन करके औरों का कल्याण करना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 5 मार्च 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। मीठे बच्चे खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते चलो तो बाप को याद करो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उसका उत्तर है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमद्। बाबा जो श्रीमद् देते हैं उस श्रीमद् पर चलते हैं तो हर प्रकार से सेफ रहते हैं। अगर श्रीमद् पर नहीं चलते हैं, थोड़ा सा भी मनमत मिक्स करते हैं तो कितनी कंफ्यूजन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमद्। बाप की जो पहली श्रीमद् है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसी श्रीमद् पर चलो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी है। बाबा की जब मुरली चलती थी सेंटर्स पर भी भाई बहने हैं, तो इधर भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि बाबा की जो मुरली चल रही है उसी डेट की नहीं होती थी, अलग अलग डेट की होती थी, क्योंकि जब तक मुरली उनके पास पहुंचे। लेकिन उनकी बुद्धि में इतना पक्का होता था कि हम बाबा के पास बैठे हैं। और अभी तो क्या है कि जो मुरली यहाँ पर चलती है वही सेम मुरली उसी दिन सभी सेंटर्स पर चलती है और बाबा सामने रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाप आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने, और बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को तो अपना शरीर नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता। बाबा को पहचान देने के लिए भी, बच्चों से बात करने के लिए भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको युक्ति बतलाता। कल्प, हर कल्प में बाबा आते हैं और पावन बनने की युक्ति बताते हैं। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। अभी कहाँ पर है, हालत क्या है? बाबा कहते शोक वाटिका है, रावण राज्य में है। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग, वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि कौन सी बात, कि बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। अभी भी हम देखते हैं कई कई बच्चे हैं बाबा के घर हैं, और घर बड़ा भी है, कईयों का तो छोटा है। भल छोटा भी है लेकिन दिल बड़ा है। घर के अंदर भी गीता पाठशाला है और गीता पाठशाला चलाते। यहाँ भी कई बैठे होंगे, है कोई जिनके घर में गीता पाठशाला है? हाथ खड़ा करो, देखो कितने बैठे हैं। ताली बजाओ इनके लिए। बाबा कहते देखो, ये दिल में बाबा से प्यार है, रहम की भावना है, तो घर में भी गीता पाठशाला खोल देते हैं। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है, तो तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है ही रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं, वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। कौन सी बात, वैसे ज्ञान बहुत देते रहते हैं, लेकिन ये बात कम ही बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो बाबा भी पक्का कराते औरों को कैसे समझाना है, कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे ही समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आश्रित कर्म नहीं करो, माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह जरूर वह कर्म विकर्म बनेगा। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ये ईश्वर सर्वव्यापी, बाबा आज बहुत अच्छी बात बता रहे। बाबा कहते जो कहते ना ईश्वर सर्वव्यापी, ये किसने कहा? बाबा ने कहा माया ने कहलवाया। माया की प्रवेशता हुई तो ऐसा उल्टा ज्ञान देने लगे। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलवाया है ना। माया तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। पक्का करा रहे। माया ऐसी छोटी छोटी बात में कुछ न कुछ गलती कराती, माया तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमद पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति आदि जो भी करते हो नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि बाबा का ज्ञान नहीं, बाबा से नहीं मिले तो फिर धीरे धीरे नीचे उतरते ना। इस रावण राज्य में तुम जो भी भक्ति करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पहले थोड़ी कुछ जानते थे, बाबा आए और बाबा ने बताया तब तो जानने लगे ना। तो बाबा कहते बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते हैं ना भक्ति मार्ग में भी, गाते हैं कहते हैं, क्या कहते, जब कुछ कोई नहीं मानता ना कोई बात तो क्या कहेंगे, हे ईश्वर इसको बुद्धि दो। कभी कहेंगे हे भगवान इसको सदगति दो, भक्ति मार्ग में कहते रहते ना। तो बाबा कहते बाबा ने आकर के तुमको कितनी ऊंची बुद्धि दी है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे। घर में भी होता है लड़ते झगड़ते ना, तो क्या कहते माँ बाप, कहते देखो बच्चे के लिए भी कहेंगे इसकी बुद्धि को क्या हो गया, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा को भी कहना पड़ता है, भक्ति में भी कहा लेकिन हुआ तो नहीं ना कुछ। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे। परंतु तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि किसको दे रहे हैं, हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा बहुत अच्छी बुद्धि हमको दे रहे हैं। अब उस अच्छी बुद्धि का कहाँ यूज करना है, अच्छे कार्य में। तुम जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं नीचे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से, भल घूमो फिरो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तो तुमको शरीर भी भूल जाएगा। बाबा कभी कहते थे बाबा की याद में तो माउंट से नीचे आबू रोड तक भी चले जाओगे, तो ऐसे भी होता था। तो बाबा की याद में बाबा कभी पहाड़ी पर ले जाते, बाबा कभी कहाँ ले जाते, तो पता भी नहीं पड़ता था, सब ऐसे चढ़ जाते थे घूमते फिरते। बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं कहाँ तक चले जाएंगे पता भी नहीं रहेगा और शरीर की थकावट भी नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते। भक्ति में क्या कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और गम जैसा कोई मर्ज नहीं। गम लग जाए ना किसी बात का, उस जैसी कोई बीमारी नहीं है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते, अभी जाएंगे कहाँ जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, थोड़ा धन कमा करके आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते तुम यहाँ बैठे बैठे कितना धनवान और संपत्तिवान बनते हो। बाप कहती मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं, गायन भी उन्हों का है। शांति धाम और सुख धाम में जाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, ये है ही। बाबा कहते देखो देवताओं का ही गायन है, सुख धाम शांति धाम में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु ये कोई थोड़े जानते हैं कि भगवान कैसे आकर हमको भक्ति का फल देंगे। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा, वो मांग रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन हम बच्चों का कितना बड़ा भाग्य, बाबा हम बच्चों को भक्ति का फल दे रहे हैं। भक्ति के दो फल हैं, कौन से फल है दो? एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। भक्ति के दो फल हैं, एक है मुक्ति और दूसरा है जीवन मुक्ति। ये भी तो समझने की बड़ी महीन बातें हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी, बाबा ने कल भी बताया ना, जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की उनकी निशानी क्या होगी, वो ज्ञान को अच्छी तरह से जल्दी समझ लेंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं वो धीरे धीरे समझेंगे और बाद में समझेंगे, बाद में आकर के थोड़ा बहुत पद पा लेंगे। तो बाबा आज भी बता रहे हैं कि जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान भी अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा ही पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे और फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबर वार पद है ना। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मेरे को छोड़ा, एकदम नीचे जाकर गिरे। बाबा देखो कितना बता रहे हैं, बाबा का बना, सेवा किया, सब कुछ किया, फिर ऐसा कर्म किया तो क्या हालत हो जाती है। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं, बिल्कुल सुधरते नहीं, गिरे सो गिरे फिर सुधरते नहीं है। कोई की दिल अंदर खाता है, दुख होता है कि हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। कईयों को तो अंदर से रियलाइज भी होता है, कईयों को तो बिल्कुल रियलाइज नहीं होता। कोई भी बात में अगर किसी को रियलाइज नहीं होता ना तो वो उल्टा बोलेगा ये ऐसा था ऐसा था, लेकिन जो रियलाइज करता है वो फिर उसको अनुभव भी अच्छा होता है। तो बाबा कहते हर बात की रियलाइजेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा, वह फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है, बाबा है, बाबा प्यार भी करते हैं, सब कुछ देते हैं, और लास्ट में फिर बाबा का पार्ट क्या है, धर्मराज भी है। उसमें पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत है किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है। कई होते ना लौकिक में आवेश में आकर क्या क्या कर देते हैं, फिर लास्ट में पश्चाताप होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी भी उनकी बुद्धि मारी जाती है उस समय। ऐसे बहुत हैं किसी का खून आदि करते हैं, फिर जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है। नायक उनको मारा, फिर उनको रियलाइज होता है क्यों हमने ऐसा किया, अपना भी घर बर्बाद हुआ, उसका भी हुआ, सब कुछ चला गया ना। तो नायक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं, ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते। जब गुस्सा आता है ना तब तो मनुष्य को समझ नहीं आती क्या से क्या बोलते हैं और क्या से क्या करते हैं। तो बाबा कहते ये भी तो पढ़ते रहते ना, ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। बाबा के टाइम पर तो नहीं पढ़ते थे ना लोग, माताएं आती थी भोली भोली, वो थोड़ी अखबारें पढ़ती थी। अभी तो हर तरफ से चारों तरफ हर प्रकार की न्यूज मिलती रहती है, टीवी में मिलती रहती है, मोबाइल में मिलती रहती है, चारों तरफ समाचार तो सुनते रहते हैं ना। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालातें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरना ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो, बुद्धि में ये बात है कि हम ही बाबा को याद करें, कोई भी ऐसी छी-छी कर्तव्य ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाबा हमेशा कहते थे बच्चों को, हर एक को अपना ध्यान देना है, कोई भी ऐसी बात में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना, कोई की चाल चलन बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब। स्कूलों में भी ऐसे ही होता है, तो यहाँ पर भी बाबा के पास पता है बाबा को कौन क्या कर रहा है। नंबर वार तो होते हैं ना, ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में ये आदत है, इस कारण से हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे किसको दुख देंगे, तो बाबा को फिर क्या कहने की जरूरत ही नहीं है, दुख देंगे तो फिर दुख ही पाएंगे ना। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे किसको दुख देंगे, तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठी बच्चे अपना और दूसरों की तकदीर बनानी है, मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है, तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बन करके तुम्हें पढ़ाते। बाबा को रहम आया, टीचर बन के पढ़ाते हैं और इतना ऊंच पद देते, इतनी बड़ी बादशाही देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें भी रहम दिल बनना होता है। पढ़ने और पढ़ाने में भी बाबा कहते रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, ये तो है ही एक टीचर, ये सब सब्जेक्ट का केवल एक टीचर। और स्कूलों में क्या होता है, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है, यहाँ पर तो एक ही टीचर है। तो बाबा कहते ये तो है ही एक टीचर, और पढ़ाई भी एक है, टीचर भी एक है, पढ़ाई भी एक है, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसमें है मुख्य पवित्रता की बात, पवित्रता सब मानते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकते। बाबा बताते हैं, अब तकदीर में नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कहेंगे कि देखा जाएगा, तो बाबा कहते फिर तदबीर भी क्या कर सकते हैं। ऊंच मार्क्स पाने का नहीं है तो टीचर भी तदबीर क्या करे, ऊंच पद पाना ही नहीं है, टीचर भी क्या करे और उसकी तदबीर भी क्या करे। ऊंच पद पाने का नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे, ये बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं, तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्योग्राफी समझा ना सके। बाबा बताते सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, सिवाय बाबा की ओर कोई समझा न सके। बाप बताते हैं कि तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई समझा न सके, तुमको तो हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, हर ज्ञान के पॉइंट बेहद की है और बेहद का वैराग्य है, ये भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पति दुनिया का विनाश और पुरानी दुनिया की स्थापना होती, तो बाबा कहते बेहद का वैराग्य बाबा कब समझाते, जब पति दुनिया की विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं ये तुमको सिखलाते हैं जबकि पति दुनिया का विनाश पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उनको तो जंगल में रहना है। पहले पहले तो ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे, वह सतो प्रधान ताकत थी और वो मनुष्यों को खींचते थे, उनके अंदर इतनी पावर थी और लोग जाकर के जंगलों में उनकी पूरी सेवा करके आते थे और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करके आते थे। अभी तो जो जो नीचे गिरते जा रहे ना, तो बाबा कहते हैं पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे, वह सतो प्रधान ताकत थी जो मनुष्यों को खींचते थे, कहाँ कहाँ कुटियों में जाकर उनको भोजन पहुंचाते, कहाँ कहाँ वो गुफाओं में बैठते थे, कहाँ कहाँ कॉर्नर में होते थे और ये मनुष्य जाते थे दूर दूर से जाकर के उनको भोजन सब साधन देख के आते थे। अभी भी आप देखो कोई प्रकार के गुफाओं में जाओ तो कितनी मेहनत लगती है गुफाओं के पास जाने में, तो बाबा कहते वहां पर भी कैसे कैसे वो पहुंच करके उनकी सेवा करते थे क्योंकि ताकत थी ना। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ कुटियों में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं की बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। वो भक्ति करते हैं और बाबा के बच्चे योग में रहते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएं। परंतु सिवाय बाप के वहाँ तो कोई ले ना जा सके। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापिस चली जाती हैं, वो जाएंगे ब्रह्म को याद करते हैं, बाबा आते हैं सबको साथ ले जाते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सभी आत्माएं वापिस चली जाती हैं क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। क्यों सब आत्माएं मुक्ति धाम में जाते हैं? बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया चाहिए। बाबा कितना प्यार करते बच्चों को नई दुनिया में भेज देते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का तो कोई को रहना नहीं है, पुरानी दुनिया में तो कोई को रहना नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे और कोई नहीं था। सारे विश्व पर बाबा के बच्चे ही राज्य करते थे, सारा विश्व एक था, ना कोई धर्म ना कोई दूसरा देश, सारा विश्व एक है, तो हम ही वहाँ पर थे। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड होता ही नहीं था। वहाँ जमीन भी बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुन्द्र को सुखाकर जमीन बनाते रहते। अभी तो जमीन की इतनी कमी है, जहाँ जाओ कमी है, एक एक इंच के लिए भी लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते अभी इतनी जमीन ही नहीं है और अभी क्या करते हैं, कहाँ कहाँ शहरों के अंदर जो समुन्द्र किनारे समुन्द्र सुखाकर की जमीन बनाई है। फिर बाबा कहते फिर क्या होगा, ये फिर समुन्द्र ले लेगा अपनी जमीन को। तो बाबा कहते हैं यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुन्द्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सिखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थे, बॉम्बे तो कुछ नहीं था, समुन्द्र था, थोड़ी सी धरती थी, और अभी तो बॉम्बे तो ऐसा बना दिया चारों तरफ उसको सुखा दिया और चारों ही तरफ क्या है, मकान ही मकान, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो बाबा फिर क्या कहते हैं आगे चल के क्या होगा, समुन्द्र फिर उसको भी ले लेगा। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी, बाबा तो अनुभवी है ना, समझो अर्थ कोई खोती है, वह मूसलाधार बरसात होती है तो फिर क्या करेंगे, सबका सब डूब जाता है, बरसात में डूब जाते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते ना। तो बाबा कहते हैं समझो अर्थ क्विक होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है तो फिर क्या कर सकेंगे, बाहर तो निकल ही नहीं सकेंगे, नेचुरल क्लैमिटीज तो बहुत आएंगे। अभी देखो ना, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ बर्फ पड़ रहे है, कहाँ अर्थ क्विक आ रहा है, कहाँ भूकंप आ रहे है, कहाँ कुछ कुछ हो रहा है, क्या हालात हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं, आज क्या है कल क्या होगा ये सब तुम बच्चे ही जानते। आज दुनिया की हालत क्या है, कल नई दुनिया होगी, बाबा कहते ये तुम बच्चे ही जानते हो, ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ, तो जरूर आएंगे ना। बाबा कहते बुलाया है, कहा है, तो जरूर बाबा को आना पड़ेगा ना, तो जरूर आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति बतलाते हैं, कितना प्यार से बताते हैं, कितना अच्छी रीति बतलाते हैं। भगवानो वाच्य मनमना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ माम एकम याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज, ज्ञान को तो अच्छी तरह समझ भी जाते हैं, सुना भी सकते हैं, लेकिन मेहनत किस में है, बाप की याद में। तो बाबा कहते हैं भगवानो वाच्य मन मना भव, देह से देह के सभी संबंधों को तोड़ माम एकम याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी याद कर लेगा तो छोटे बच्चे फिर याद कर सकेंगे। बच्चे को सिखा देते ना, आत्मा कहाँ है, तुम कौन हो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा कहाँ रहता है वो बताता है आत्मा का, लेकिन योग तो नहीं कर सकता ना, भले वो साइलेंस में थोड़ा टाइम बैठे, योग क्या है वो तो इतना समझा नहीं है। ज्ञान की बातें तो उसको पक्का करा देंगे, वो तो पक्का सुना भी देगा, एक्यूरेट सुनाएगा। तो बाबा कहते हैं छोटा बच्चा भी याद कर लेगा, बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करे वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में भी नहीं ठहर सकता, अब बड़ों की बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो बच्चे की बुद्धि में क्या बैठेगा, बड़ों की बुद्धि में भी नहीं ठहर सकता तो छोटे बच्चे फिर कैसे याद करेंगे। भल शिव बाबा कहे फिर भी, परंतु है तो बेसमझना। छोटे छोटे बच्चे देखो ना आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एक साल का है, दो साल का है, शिव बाबा करते रहते हैं, शिव बाबा का फोटो दिखाएंगे ना तो कहेंगे शिव बाबा काम उंगली से करता है, लेकिन बाबा कहते ये तो सब कर देगा, लेकिन अंदर से तो बाबा को याद तो नहीं कर पाएगा ना। तो बाबा कहते क्योंकि है तो बेसमझना, हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं, ये समिति में आना मुश्किल लगता है। बड़े ही बिंदी को भूल जाते हैं तो छोटे कैसे बिंदी को याद करेंगे। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं, ये समिति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना, कौन सी बात, कि हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं, यही यथार्थ रीति याद करना। मोटी चीज तो है नहीं, बिंदी तो इतनी सूक्ष्म है किस समय खिसक जाए पता भी नहीं रहता, मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहती है यथार्थ रूप में मैं बिंदु हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करें ये बड़ी मेहनत। गीता में भी कहा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुश्किल ही कोई पहचानता है, तो बाबा भी कहते मैं बिंदी हूँ, मैं जो हूँ जैसा, उस रीति को यथार्थ रीति याद करे ये भी बहुत मुश्किल है। यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करें ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है और हम कहते हैं कि परमात्मा कौन है, एकदम बिंदी है। वो कहेंगे ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा तत्व है और हम क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना, ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्मे रहती हैं वह उनको परमात्मा कह देते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते। आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे थे परे रहने वाला हूँ। तुम भी तो परे थे परे रहते हो, बाबा अपना परिचय भी देते हैं और बच्चों का भी परिचय देते हैं कि मैं भी परे थे परे रहने वाला हूँ, तुम भी तो परे थे परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा बिंदी है, उसको बिंदी को क्या छोटा बड़ा करेंगे, बिंदी को ना तो काट सकते हैं ना उसका कोई हिस्सा कर सकते हैं। तो बाबा कहते आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है, वे ज्ञान का सागर है। तुमको आकर समझाती है, इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे, तुम्हारे में से, अब बाबा बता रहे, तुम्हारे में से सबसे खोटी तकदीर किनकी है, बाबा बता रहे। देखो उसको खोटी तकदीर, इतनी बड़ी तकदीर बन रही है, विश्व का मालिक बनते बनते अगर बाबा का हाथ छोड़ेंगे तो क्या होगा, कहेंगे ना खोटी तकदीर, कहाँ किसके पास लखपति हो, एकदम कुछ भी ना रहे तो कहेंगे ना खोटी तकदीर है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। जब ऐसी हालत हो गई कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठेगा ना, दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके कि पवित्र बनो। कई कई ऐसे थे पवित्र बनते थे, ज्ञान सुनाते थे, फिर औरों को बना भी दिया, खुद जब ऐसे बनते हैं तो फिर बिल्कुल दूसरे को समझा नहीं सकते, तो वो औरों को कह ना सके कि पवित्र बनो। अंदर समझते हैं कि पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कराई सारी कमाई चट कर ली, फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाबा कहते देखो एक छोटी सी, छोटी नहीं बहुत बड़ी भूल से क्या हालत हो जाता, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर ही खोटी है। जब कोई साहब कुछ दिवाला मार देता है तो उसको क्या कहेंगे, तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है। तो बाबा भी को कहना पड़ता है कि तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर ही खोटी है, माया जीत जगत जीत बनना है, जगत जीत महाराजा महारानी को कहा जाता है, प्रजा को थोड़ी कहेंगे। भल वो जीत पा लेते हैं, सुखी हैं, लेकिन उनको थोड़ी कहेंगे जगत जीत। तो बाबा कहते जगत जीत महाराजा महारानी को कहा जाता है, प्रजा को थोड़ी कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जो करेगा अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते बाबा के लिए नहीं करना है, अपने लिए करो, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे बहुत दान करने वालों को फल भी मिलता है ना, दान करने वाला का नाम भी होता है। आज की दुनिया में कोई दान करते तो उनका नाम होता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा है, इतना दान करता है, उनको प्राप्ति भी होती रहती है और उनका नाम भी होता है, दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्प काल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती। क्या हो जाता है, माया भी बड़ी होशियार है, जोर से चमाट मार के गिरा देती। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती। माया भी कम दुष्टर नहीं है, बहुत तेज है, माया भी कम दुष्टर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा भी हुआ, पवित्र रहे झगड़ा भी हुआ, दूसरों को भी पवित्र बनाया, फिर क्या हालत हो गई। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा भी हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद जाकर गिरा। क्या करती है माया, देखो इतना अच्छा बच्चे बाबा के बने, औरों का जीवन बनाया, खुद क्या हाल हो गए। झगड़ा भी हुआ, दूसरों को गिरने से भी बचाया और फिर खुद जाकर गिरा। तो क्या कहेंगे बाबा, कहते तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। बने बाबा के, सब कुछ लिया, फिर माया का बने तो क्या हुआ, अपने ही दुश्मन बन जाते, क्योंकि उनका सब कुछ चला जाता, तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना, बाप आकर बच्चों को प्यार करते, खुदा दोस्त था ना, वो सबको प्यार करता था। तो बाबा कहते बाबा भी खुदा दोस्त है। खुदा दोस्त की एक कहानी है ना, बाप आकर के बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति के भी साक्षात्कार होता था। शुरू शुरू यज्ञ की स्थापना हुई ना, बच्चियां आती थी, माताएं आती थी, कोई भक्ति नहीं किया, बच्चियों ने क्या भक्ति की, कुछ नहीं किया, इतने साक्षात्कार होते थे तो लोग समझते थे कि इतनी भक्ति करने वाले और पूजा करने, उनको साक्षात्कार नहीं होता, और ये जाते ही साक्षात्कार हो जाता है तो उसको लोग क्या समझने लगे, जादू है। तो बाबा कहते हैं बिगर भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता था। तो खुदा दोस्त हुआ ना, दोस्त था तो इतना कुछ अनुभव कराया ना, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद करा दी, क्योंकि बाहर वाले समझते जादू है, ऐसा तो होता ही नहीं है कि जाकर बैठे हैं। पहले आते थे ना, जैसे ही वो एंटर किया, बाबा के सामने बैठे या क्लास में बैठे, तो एकदम साक्षात्कार में चले जाते थे, बिना सोचे समझे सब कुछ हो जाता था। तो वो लोग फिर क्या कहने लगे, जरूर ये जादू है कि बिना भक्ति किए इनको साक्षात्कार कैसे हो गया। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार कराते हैं, बिगर कोई भक्ति करने के साक्षात्कार होता है। तो दोस्त था ना, कितना साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहे। पिछाड़ी में चारों तरफ हाहाकार होगी और बाबा के बच्चे क्या करेंगे, बाबा के पास बैठे हुए अच्छे अच्छे अनुभव करते रहेंगे। पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, आगे कितना मजा होता था। शुरू का जो था वो दृश्य, शुरू का जो अनुभव था इतना प्यारा था। तो बाबा कहते आगे तुम कितना मजा करते थे, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे उसके बाद पार्टीशन के बाद भारत में आए, तो शुरू शुरू में जैसे ही सेंटर पर जाते थे सबको साक्षात्कार होता था, सब उस मजे में, उस अव्यक्त स्टेज में होते थे। अभी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बाबा कहते आगे कितना मजा होता था। फिर वह देखते देखते भी कितने कट हो गए, इतने बाबा के बच्चे आए और धीरे धीरे माया ने उनको अपनी तरफ छीन लिया। वह देखते देखते भी कितने कट हो गए, भट्ठी से कोई ईंटें पक कर निकली, और कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। भट्टी होती है ना, उसमें ईंटें डालते, कई ईंटें तो बहुत अच्छी पक्की निकलती है, कोई फिर आधी कच्ची पक्की होती है, कोई तो बिल्कुल ही नहीं पकती है। तो यज्ञ में भी ऐसा हुआ, आज जो बिल्कुल पक्के और निकले तो पूरा ही यज्ञ उनके ऊपर आधारित बाबा ने कर दिया, और कोई कोई ऐसे निकले जो छोड़ के भी चले गए। तो बाबा कहते हैं भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए, अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। क्योंकि जब यज्ञ में आए तो फिर यहाँ से चले गए, तो जाकर के बिजनेस किया, कमाई किया, तो फिर क्या हुआ, पैसा तो कमा लिया, फिर अपने आप को समझने लगे कि हम स्वर्ग में हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो भी गए सभी ने रियलाइज किया कि हमने ऐसे क्यों छोड़ा। फिर धीरे धीरे वो आने लगे, उस समय तो नशा था कि हम बहुत पैसे स्वर्ग में हैं। तो बाबा कहते हैं कितने चले गए, अब वे लखपति करोड़पति बन गए, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। जितने गए पहले सोचा स्वर्ग में, बाद में समझ गए ये तो सब कुछ नहीं है। फिर सबको, कितनों को नुकसान हुए, कितने बहुत प्रॉब्लम्स आए, फिर बाबा के आकर के बने, तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। अब यहाँ स्वर्ग कैसे हो सकता है, स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी भी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो सारे विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। बल्ब तो थोड़ी लाइट देगा ना, थोड़े उसी पोर्शन में देगा, लाइट हाउस तो चारों तरफ देता ना। इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता, सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। कौन सी? एक है स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणों के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति। जैसा कि बताया था, मधुबन के सभी समर्पित ट्रायल वाले, हॉस्पिटल के समर्पित ट्रायल वाले भाई बहने अभी हिस्ट्री हॉल में जाएं, जहां पर इंदौर की बहनें आपसे मिलेंगी। और दूसरी बात, आज बम्बई घाटकोपर से खास नलिनी दीदी के निमित्त बड़ा ग्रुप आ रहा है। दोपहर को 11 बजे नलिनी दीदी के निमित्त पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में भोग रहेगा, जिसमें मधुबन निवासी भाई बहने भी बैठ सकते हैं। तो वो बड़ा ग्रुप आ रहा है खास, क्योंकि नलिनी दीदी का मधुबन से बहुत प्यार, चारों धाम से, बाबा से, साकार बाबा की पालना ली हुई, तो उनका बहुत शुभ संकल्प मधुबन के प्रति रहता था। तो उनके निमित्त भी 11 बजे पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में भोग लगाया जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद सभी विदेशी, डबल विदेशी भाई बहने